पिछले पारे में हमने कारून के किस्से के अंदर फर्क की बात की थी। ला तफरख, उसको कहा गया था कि ज्यादा बड़े ना बनो, लेकिन आज अफसोस के साथ है कि हमारे इर्द गिर्द की जो सोसाइटी है ना, वो हमें जबरदस्ती करके, कह लीजिए मजबूर करके, ऐसा लाइफस्टाइल को इख्तियार करने की दावत दे रही है जिसमें हर वक्त खरीदो शॉपिंग। अब ये मौका आ गया तो खरीद लो, अब वो मौका आ गया तो खरीद लो। अब जब जिंदगी में इस तरह की चीजें ज्यादा हो जाएंगी ना, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? नमाजें फिर गैप हो जाएंगी, अल्लाह का जिक्र अच्छा नहीं लगेगा, कुरान के लिए वक्त ही नहीं होगा। हमारा जो एक्सट्रैक्ट है ना, वो दुनिया ने जोड़ लेती है, उस लीमू की तरह जिसमें बहुत जूस था लेकिन कोई निचोड़ के उसका छिलका वहां रख दे तो आप कहेंगे लाओ मैं जरा कुछ लीमू का रस ले लूं, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो जूस था वो तो किसी ने निचोड़ लिया। आज इंसानों की दुनिया और दुनिया को पाने की कोशिश मर्द कमाने में, औरतें उसको फिर खर्च करने में इतना थक रहे हैं कि ना नमाज का सही वक्त है, ना खुशू है, ना खुदू है, और ना कुरान का। इस बात से ये पारा शुरू हो रहा है, और अगर इस पूरे पारे के अंदर जो मजामीन है अगर हम उसको देख लें, तो इसमें भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। सबसे पहला इसका मैसेज कि नमाज बेहयाई और मुनकर से रोकती है। सूरत अनकबूत की आयत 45 से ये पारा शुरू होता है। फिर हर चीज़ का राजिक अल्लाह है। फिर तीसरा पैगाम, मैं तरतीब से चल रही हूँ बगैर आपको आयते बताए, रुकू वाइज कर लीजिए। असल जिंदगी तो आखरत की जिंदगी है। वमा हाज़िहिल हयात दुनिया इल्ला लहवुन व लाइब। फिर अगला, उसके बाद हक के सच्चे मतलाशी के लिए सीधे रास्ते खोल दिए जाते हैं। जैसे अल्लाह ने आपको कुरान के लिए लाके बिठा दिया ना, अगर तड़प सच्ची रही, आगे भी चलते जाएंगे, तो बड़ा खूबसूरत मुस्तकबिल आपका रास्ता देख रहा है। फिर उसके बाद सूरत रूम शुरू होती है, उसमें कुरान पाक की कुछ पेशन गोइयां जो बाद में सच साबित हुई। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी निशानियों में एक निशानी शौहर और बीवी का रिश्ता, वहां जाएंगे तो बात करेंगे, अभी तो बस आप टॉपिक लिख लें। फिर नेक्स्ट टॉपिक, इंसान जब पसंद नहीं करता कि कोई उसका हमसर बन जाए, हम अपनी जात में शिर्क पसंद नहीं करते, बीवी चाहती है कि उसका शौहर दूसरी शादी कर ले क्योंकि फिर मेरा शौहर शेयरिंग पे आ जाएगा, कोई बच्चा आपके साथ किसी और को भी कहे आप भी मेरी मामा है, तो जब हम शेयरिंग पसंद नहीं करते तो अल्लाह कैसे करे, वो तो खैर मिसाल से मुबर्रा है। फिर अगला पैगाम क्या कि सूद लेने से माल कम होता है और ज़कात देने से बढ़ता है। और उसके बाद फिर आयत 41 में सूरत रोम की, जहर अल फसाद फिल बर्री वल बहर। दुनिया में खुशकी और तरी पर फसाद फैल गया इंसानों के बुरे करतूतों की वजह से। फिर इसके बाद आयत नंबर 54 से ऑनवर्ड, इंसानी जिंदगी के मराहिल, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर दोबारा बंदा बच्चा ही बन जाता है। फिर उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आलाते मौसीकी, इसके जरिए इंसानों को कैसे खराब किया गया, और ये आज के पारे के थीम के अंदर भी आएगा। नमाजें क्यों बेकैफ हुई, कुरान क्यों ना समझ आया, वक्त क्यों ना मिला, क्योंकि हमारी जिंदगियों में लगवियात बहुत है। तो आज के पारे का मेन थीम, इंशाल्लाह बोलती हूँ सिर्फ इसके मजामीन पूरे कर ले, छोटी सी नेकी को हकीर ना जानिए, क्योंकि अल्लाह कयामत के दिन उसको भी निकाल के बाहर रखेगा। फिर बॉडी लैंग्वेज, लुकमान अपने बेटे को जो नसीहतें करते हैं तो उसमें वला तुसार खद्द कल नास, यानी मुंह फुला के ना बातें करो, एटीट्यूड ना दिखाओ, और बहुत ऊंची आवाज से बात करना अखलाक से गिरी हुई बात है। फिर उसके बाद अल्लाह की किबरियाई और उसकी हमदो सना का हक अदा करना मुमकिन ही नहीं, इस पे सूरत लुकमान पूरी होती है। और उसके बाद फिर सूरत सजदा, जो आप हर रात को पढ़ते होंगे इंशाल्लाह। आखरत में इंसान हर चीज पर ईमान ले आएगा, मगर फायदा कोई नहीं। क्योंकि पर्दा तो छट गया, तो उसके बाद तो सब कुछ दिख रहा है आपको। लिख लें एक जुमला, क़यामत आने के बाद अबू बकर सिद्दीक और अबू जहल का ईमान बराबर हो जाएगा, मगर अबू जहल को फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब जब खुली आंखों से सब दिख रहा है तो वो माने ना माने उसकी मर्जी है। फिर इसी तरह से तहज्जुद का तस्करा है, तताजाफ जुनूबहुम अनिल मदाजी। जन्नत की क्या नेमतें अल्लाह ने तैयार की हैं जिसको बंदा सोच ही नहीं सकता। फिर उसके बाद कुरान मजीद से नसीहत के बाद फिर हक बात से मुंह फेर लेना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और फिर उसके बाद बच्चे को उसके बाप की तरफ ही निस्बत दो, जिसको आप कहते हैं ले पालक बच्चा या किसी और का नाम बच्चे के साथ लगा देना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तो आप सोचिए उन माशरों का क्या होगा जहाँ बाप का नाम ही कोई नहीं। सूरत अहज़ाब जब शुरू होती है ना, तो फिर एंड तक गज़वे खंदक की कुछ बातें हैं, और उसके बाद फिर लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, जो हमारे इस साल के थीम पे है, नबी सल्लम के उसवे हसना की तबा। और आपको इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार एक ख़ाशे का भी दिखेगा, नमाज़ों में खुशू था, अपनी बीवियों के साथ मामलत में कैसे थे, और इसी तरह एक जर्नैल, एक कायद, एक जंगी लीडर होने के नाते आप कितने बेदार मख्स थे। और हम सबको ये दावत दी जा रही है जिस पे पारा फिर मुकम्मल हो जाएगा, कि अपनी ज़िंदगी के हर मामले में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बना लो। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। अब चलेंगे आयतों के साथ साथ पारे पे और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में भी बरकत दे दे। अब चलते हैं हम आयतों पे। औसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि वाक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़ख्शाई वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यालमु मा तस्नऊन। जो किताब आपकी तरह वही की गई है इसे पढ़िए और नमाज कायम करें, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, बेशक अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज है, जो कुछ तुम कर रहे हो इसे अल्लाह खबरदार है। इस फ्रेज को हाईलाइट कर लें, इन सलात तनहा अनिल फख्शाई वल मुनकर। नमाज के फवायद गिने नहीं जा सकते, और कोई एक फ़ायदा भी ना हो हम फिर भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन इस आयत में नमाज का दुनिया में सबसे बड़ा फ़ायदा जो बताया गया वो क्या है, फहाशी और बेहयाई से रुकना और बुराई से रुकना। नमाज बंदे को लगवियात से और बेकार बातों से रोक लेती है। जो नमाजी होगा ना वो फुहश नहीं देखेगा, वो बेहयाई नहीं करेगा, उसकी ज़िंदगी में फिक्शन एक आदत के तौर पे नहीं शामिल होगा। वो कोई स्क्रीन पे चीज़ देखने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा कि इन आँखों से मैं जो देख रही हूँ, क्या कल इन्हीं आँखों के साथ अल्लाह को देखूँगी, इसकी ख्वाहिश करती है। अल्लाह की दी हुई नेमतों को इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक वो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ ना कायम कर ले। तो नमाज बंदे को बेहयाई से रोकती है। आज नमाजें तो हैं, क्या मुनकर रुक गया, बेहयाई खत्म हो गई? वजह क्या है? पूछिए खुद से, हम सब अपने लिए, क्या हमारी नमाजें हमें फुहश और बुरे कामों से रोकती हैं? क्या हम नमाजों में अल्लाह के सामने खड़े होने को महसूस करते हैं? 5 वक्त नमाज के लिए खड़ा होना ये क्या है? मैदाने महशर में खड़ा होने की प्रैक्टिस है। यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। रिहर्सल करते हैं लोग, पहले दौर में जब ड्रामे स्कूलों में होते थे तो पहले कितने दिन उसकी रिहर्सल होती थी, क्योंकि जी ईद पार्टी में फलाने ने ये टेबलो करना है। आज इसकी एक बड़ी फुहश किस्म की मिसाल जो किसी के थ्रू मेरे सामने आई, कि शादी के दिन या शादी की सेलिब्रेशंस के नाम पे, थीम्स के नाम पे, तो शादी से 1-2 दिन पहले फिर लड़का लड़की और उनके दोस्त सहेलियाँ आके पहले पिक्चराइज कर रहे होते हैं, रिहर्सल करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप एक जुमला लिखिए पहले, फिर मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको हेल्प करती हूँ। हम 24 घंटे हालत नमाज में नहीं रह सकते, मगर कैफियत नमाज में रह सकते हैं। शुरू में नमाजें 50 थी, 50 नमाजों को अगर आपने 24 घंटे में डिवाइड करना होता तो कैसे करते? जरा ध्यान में लाइए, काट के देखे, 24 आवर्स 50 के साथ करते, हर आधे घंटे बाद ऑलमोस्ट एक नमाज आती, ऐसे ही है ना? अच्छा, अब एक नमाज तो पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ने में चले 15 मिनट लग गए, तो 15 मिनट बाद अगली नमाज का वक्त आ जाता। ये तो अल्लाह हजरत मूसा का भला करे कि उन्होंने 50 को 5 करवा दिया, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने अजर फिर भी 50 का दिया। अगर नमाज अपनी असल वाली कैफियत पर रहती ना, तो हम 24 घंटे हालत नमाज में रहते, ये मतलूब नहीं था। फिर खाते कब, पीते कब, सोते कब, मर्द काम कब करते, बच्चे कब पर स्कूलों में जाते? अल्लाह ने उसको क्या किया? खुशू के साथ नमाज पढ़ लो, 15 मिनट भी लगते हैं ना अगर तुम्हें 4 फर्ज पढ़ने में, तो इतने ही प्यारी नमाज पढ़ लो कि तुम्हारी नमाज की ये हालत अगली नमाज तक कैफियत में बदल जाए। समझ आई बात? अल्लाह सुबहान ताला आपसे मुझे सिर्फ जाए नमाज की इबादत नहीं चाहता, और जाए नमाज तय करते ही हम कुछ और ही बन जाए। क्या कहते हैं नमाज में, जाए नमाज पे खड़े होके शुरू में क्या कहते हैं? वताला जद्दुक, ऐसे ही है ना? तेरी शान बुलंद है, अल्लाह को कहते हैं। और जाए नमाज तय करने के बाद सारे झगड़े दुनिया वालों से हमारे अपनी शान के होते हैं, मुझे इज्जत नहीं दी, मुझे बड़ा नहीं बनाया। नमाज में 17 बार दिन में एक वादा करते हैं, या का ना बुदू व या का नस्ताइन, और उसके बाद कोने कोने गली गली नुक्कड़ पे हमारा बोता है, सबसे बड़ा बुत अपने नफ्स के अफराई तो मन तखद इला हवाहू। तो नमाजों को जिंदा कीजिए। जो माँ बाप फौत हो गया वो नहीं बच्चे को अच्छे बुरे से रोकते, आज हमारी नमाजें मुर्दा है। कोई खुशू कोई खुदू ना नजर आता है ना दिल में होता होगा। आगे देखिए, बोला तो जा दिलो अहले किताब, और अहले किताब के साथ बहस और मुबाहसा न करो, मगर इस तरीके पर जो उम्दा हो, मगर इनके साथ जो इनमें जालिम है, और साफ ऐलान कर दो कि हमारा तो इस किताब पर भी ईमान है जो हम पर उतारी गई, और इस पर भी जो तुम पर उतारी गई, हमारा तुम्हारा माबूद एक ही है, हम सब इसी के हुक्म बरदार हैं, और हमने इसी तरह आपकी तरफ अपनी किताब नाजिल फरमाई है, बस जिन्हें हमने किताब दी है वो इस पर ईमान लाते हैं, और इन मुशरिकीन में से बाज इस पर ईमान रखते हैं, और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ काफिर ही करते हैं। इससे पहले तो आप कोई किताब पढ़ते भी ना थे, और ना किसी किताब को अपने हाथ से लिखते थे, कि ये बातिल परस्त लोग शक और शुबे में पढ़ते, बल्कि ये कुरान तो रोशन आयते हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफूज हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ये कुरान की आयतें हमारे सीनों में महफूज कर दे। हमारी आयतों का मुनकिर सवाए जालिमों के और कोई नहीं। उन्होंने कहा कि इस पर कुछ निशानियां यानी मोजज़ात इसके रब की तरफ से क्यों ना उतारे गए? आप कह दीजिए कि निशानियां तो सब अल्लाह तआला के पास हैं, मैं तो सिर्फ खुल्लम खुल्ला आगाह कर देने वाला हूँ। अवलम यकफीहिम, क्या इन्हें ये काफी नहीं कि हमने आप पर किताब नाजिल फरमाई जो इन पर पढ़ी जा रही है, इसमें रहमत भी है और नसीहत भी है इन लोगों के लिए जो ईमान लाए। अल्लाह ऐसे लोगों में हमारा शुमार कर दे। कुल कफा बिल्लाही बैनी व बैनकुम शहीदा, कह दीजिए कि मुझ में और तुम में अल्लाह तआला का गवाह होना काफी है, वो आसमानों जमीन की हर चीज का आलिम है। जो लोग बातिल के सामानने वाले और अल्लाह ताला से कुफर करने वाले हैं, वो जबरदस्त नुकसान और घाटे में हैं। ये लोग आपसे अजाब की जल्दी कर रहे हैं, अगर मेरी तरफ से मुकर्रर किया हुआ वक्त ना होता तो अभी तक इनके पास अजाब आ चुका होता। ये यकीनी बात है कि अचानक इनकी बेखबरी में इनके पास अजाब आ पहुंचे। ये अजाब की जल्दी मचा रहे हैं, और तसल्ली रखें, जहन्नुम कुफार को घेर लेने वाली है, उस दिन उनके ऊपर तले से इन्हें अजाब ढांप रहा होगा। फील करिए इसको, अल्लाह ना करे किसी के कंफर्टर को भी आग लग जाए और नीचे से मैट्रेस को भी, क्या बनेगा? यही मफहूम है इन आयतों का, अगर आप खोल के देख लीजिए। यौम यक्षाहुम अलअज़ाबु मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम वयकूलु ज़ूकु मा कुंतुम तअमलून, और अल्लाह ताला फरमाएगा अब अपने बुरे आमाल का मजा चखो, इन आयतों को सुन के इंसान की ना जान हलक में आ जाती है। क्या करे बंदा, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा माहौल अच्छा नहीं, मेरे इर्द गिर्द के लोग अच्छे नहीं, मैं एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में रहता हूँ, मेरे इर्द गिर्द फलां फलां 10 चीज़ें, 10 लोग अपने बारे में सोच लें, एक पुकार लगती है, या इबादी अल्लज़ीना आमनू इन अर्दी वासियतुम फैया फाबुदून। ऐ मेरे बंदो ईमान वाले, यानी ऐ मेरे ईमानदार बंदो, मेरी जमीन बहुत कुशादा है, बस तुम मेरी ही इबादत करो। सारे अल्लाह के, ये कैसे? जैसे माँ अपने बच्चे से खुश होके कहती है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, क्योंकि ये मेरी बात मानता है। अच्छा, साथ ही क्या कह दिया, नहीं करने को दिल कर रहा हिजरत, मनपसंद जगह नहीं छोड़ना चाह रहे, क्योंकि मज़ा बहुत है, पैसा बहुत है, लाइफस्टाइल बहुत हाई है, छोड़ो अगर दीन खराब होता है तो हो रहा है, फिर क्या है, सब है, छोड़ो। तो याद रखो, एक हिजरत तो तुम सब ने करनी है, और वो क्या है, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाउन। हर जानदार मौत का मजा चखने वाला है, और तुम सब हमारी तरफ लौटाए जाओगे। जरा सा एक मिसाल से आपको ये हिजरत का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगी। किसी जगह बस्ती में लोग रहते हैं, अचानक देख रहे हैं कि लोग बीमार हो रहे हैं, किसी को डायरिया है, किसी का पेट लूज है, किसी को खाना हजम नहीं हो रहा, किसी को और भी बीमारी है। अब परेशान हो गए, बुलाया इंजीनियर्स को, चेक करो क्या मसला है। वो कहते हैं कि गटर की पाइपें पीने वाले पानी की पाइपों के साथ मिल रही हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर दिया जा रहा है उसमें गटर का थोड़ा थोड़ा पानी मिल रहा है। अब ये बात सुन के ही आपको कितनी घिन आ रही होगी, हाय हम गटर वाला पानी पिए। यहाँ तक सब परेशान हुए, आगे क्या हुआ, कुछ ने कहा फौरन जल्दी से बुलाओ वर्कर्स को, बुलाओ, हम जमीन खोदेंगे, पाइपें बदलेंगे, फिर पहले की तरह सेहतमंद पानी पियेंगे। ये एक गिरोह था। दूसरा कहता है, क्या मतलब है, हाय इतना गंद पड़ जाएगा, सड़क टूटेगी, मट्टी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात है कि 3 दिन पानी बंद रहेगा, नहीं, मर जाएंगे, ये नहीं हो सकता। पहले ने कहा कि देखो वक्ती कुर्बानी है, दे लो तो फिर सेहतमंद पानी पीना। दूसरे ने क्या कहा कि नहीं, हम वक्ती कुर्बानी नहीं दे सकते, पिए जाओ कुछ नहीं होता, सब पी रहे हैं ना, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। आप मुझे बताइए, इसमें से ज्यादा दुरुस्त बात किसकी है, पहले की ना, ये हिजरत है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, जैसे हमने मौत की सूरत में हिजरत तो करनी है, कुछ गंदे पानी के साथ साफ पानी मिले होने के बावजूद कहते हैं चुप करो, हमसे नहीं ये बर्दाश्त होता। ये जो अक्सर आपने सुना होगा ना कि घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं दीन के साथ, एक तो हमारी नासमझी होती है, जाते ही हम अपने घर वालों की टीचर बन जाते हैं, नाकिद बन जाते हैं, उन पर तनकीद करते हैं, और बदतमीजी के साथ हम उनको उनकी बुराइयों पर रोकते। कल तक आप खुद भी तो यही करते थे, आप तो अभी भी वही कुछ कर रहे हैं, इतना पढ़ सुन के तो वो बेचारे बगैर पढ़े सुने अच्छे बन जाए, फिर घर में झगड़े शुरू होते हैं। ये झगड़े बेहतर है अगर अच्छे तरीके से करे जाएं। जादिल हूँ बिल्लती अहसन वाली कैफियत में, सूरत नहल में हमने पढ़ा आखिर में, बिल्कुल 14th पारे के, ये जो कहते हैं चुप अमन पीस पीस लव लव, ये वो दूसरे की मिसाल है। वो कहते हैं क्यों खुदाई करें, गंद पड़ेगा, क्यों पानी बंद करें, नहीं, सब ठीक रखो, सबको खुश रखो। सब कभी खुश हुए हैं जिंदगी में? अगर आप सोचे ना कि आपके बच्चे खुश रहते बचपन में, आप अपने बच्चों को इस तरह पालती कि वो आपसे खुश रहे, और वो कि यू आर सो नाइस मॉम, यू आर द बेस्ट मॉम, तो फिर आज उनके मुंह में एक भी दान नहीं था होना, उन्होंने इतनी चॉकलेट खानी थी, और वो इतने मोटे फूल के कुप्पे हो चुके होते, उन्होंने फिजी ड्रिंक्स पीने थे। बस ये मतलब है। अब आगे सुनिए, वल्लसीना मनुहा मिलु सालिहात, और जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए, लनुबवियन्नहुम मिनल जन्नति गुरफा, यकीनन इन्हें जन्नत के इन बाला खानों में जगह देंगे, जिनके नीचे चश्मे बह रहे हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे। नेक काम करने वालों का क्या ही अच्छा अजर है। ये देखिए, आप अल्लाह के लिए हिजरत करें, अल्लाह ने जन्नत के बाला खानों की खुशखबरी दे दी आपको। कौन लोग किनको मिलेंगे ये सब कुछ? अल्लज़ीना सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो जिन्होंने सब्र किया और अपने रब्बे ताला पर भरोसा रखते हैं। और बहुत से जानवर हैं जो अपनी रोजी उठाए हुए नहीं फिरते। इन सब को और तुम्हें भी अल्लाह ताला ही रोजी देता है, वो बड़ा सुनने और जानने वाला है। हिजरत के लफ्ज के साथ ही रोजी रोटी की बात क्यों आ गई, सोचिए अपने बात। आज लोग कहते हैं यहाँ से निकल कर उधर चले जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। देखिए आप तो माशाल्लाह एक मुसलमान मुल्क में बैठे हैं ना। मैंने अपनी ज़िंदगी के पिछले 23-24 जितने भी अल्लाह ने चाहे साल गैर मुस्लिम मुल्कों के अंदर रह कर देखा है, जिसके पास आप बैठ जाए ख्वाहिश करता है नहीं बस मैंने अब ये मुल्क छोड़ देना है। अच्छा कारोबार करते हैं तो शराब बेचते हैं उसमें, सीधी सी बात है। अमेरिका में रहने वाले सबसे ज्यादा कन्वीनियंट स्टोर मुस्लिम्स के हैं, और कन्वीनियंट स्टोर का मतलब यह ये जो आपके गैस स्टेशन पे छोटे छोटे दुकानें होती है और उसमें लॉटो और शराब ऑलमोस्ट मस्ट होती है। क्या बात है भाई, ये क्या? नहीं नहीं छोड़ना है, बस सिर्फ वो कर्जा दूर हो ले ना, घर का कर्जा दूर कर दे। अच्छा बस वो पाकिस्तान में बहन की शादी है वो कर ले, 10 साल बाद भी जाके आप उनको मिल रहे हो वो नहीं छोड़ चुके। यही बात है इधर। जब बंदा गुनाह को छोड़ना चाहता है ना झटके से छोड़ देता है। और अगर आप गुनाह नहीं छोड़ रहे, गलत काम नहीं छोड़ रहे, हिजरत नहीं कर रहे, क्योंकि हिजरत सिर्फ लिटरल हिजरत नहीं है, सबसे अच्छी हिजरत तो गुनाहों को छोड़ना है ना, हराम कारोबार को छोड़ना हिजरत है। तो जब आप नहीं छोड़ते ना तो नतीजा क्या निकलता है, वो नहीं छूटती। अरबी कहावत है कि नफ्स दूध पीते बच्चे की तरह, जब मानस का दूध छुड़ाना होता है ना तो एकदम छुड़ा देगी, तो छोड़ देगा, थोड़ा रोएगा एक आध बार, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन जरा बच्चा रोए और माँ उसको दोबारा दूध दे दे फिर तो कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो एक झटके के साथ अपनी गलत चीजों को छोड़ना होगा। रह गया रिस्क, वो तो अल्लाह के हाथों में। परिंदों के पास कौन सी फैक्ट्री है, उनकी कौन सी टैक्सी है, उनके कौन से कन्वीनियंट स्टोर्स हैं? जो रब उनको देता है वो तुम्हें नहीं दे सकता। इसीलिए फरमादी और बहुत से जानवर है जो अपनी रोजी उठाए नहीं फिरते। इन सब को तुम्हें भी अल्लाह ही रिस्क देता है, वो बड़ा ही सुनने वाला जानने वाला है। तो रिस्क अल्लाह के हाथ में। आप एक ट्रायंगल देख रहे हैं इस बारे में, एक तरफ नमाज है बेरुख, दूसरी तरफ लाहौल हदीस लघवियात और लहवियात, और तीसरी तरफ खाएंगे क्या, कहाँ से खाएंगे? हाय जॉब छोड़ दी तो ये होगा, हाय कारोबार ना चला तो क्या होगा, हाय ये शराब ना बेची तो हमारा तो स्टोर ही नहीं चलेगा। और हालांकि अल्लाह भी गवाह और बंदे भी गवाह हैं कि जब उन्होंने अपनी दुकान से शराब निकाल दी ना तो दूसरी चीजें ज्यादा बिकनी शुरू हो गई। ये तो अल्लाह के साथ बंदे के ताल्लुक की निशानी है। फिर आगे एक सवाल है, वल इंसान तहुमन खलक समावाती वलर, और अगर आप इनसे दरियाफ्त करें कि आसमान और जमीन का खालिक और सूरज और चांद को काम में लगाने वाला कौन है, तो इनका जवाब यही होगा कि अल्लाह ताला। फिर किधर उल्टे जा रहे हो, यानी जिस रब ने सूरज चांद सितारों को अपने काबू में रखा हुआ है उनसे काम ले रहा है, तो क्या तुम उसकी पहुंच से बाहर हो? अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादी, अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसे चाहे फराख रोजी देता है और जिसे चाहे तंग। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। एक बहन है उसका मियाँ करोड़पति है, दूसरी का बेचारी का चंद हजार कमाता है, किसका इसमें दखल है? अल्लाह का। जिसका करोड़ों कमाता है ना वो फख्र ना करे, ला तफरख, फ्लॉन्ट ना करे, और जिसका बहुत थोड़ा कमाता है ना वो भी गम ना करे कि अल्लाह ने उसको जितना दिया उस पर राजी रहे। चादर देख कर पाँव फैलाइए, आप अपनी औकात में रहिए, आपके पास जो है आप उसको एंजॉय कर लीजिए, बस इतनी सी बात है। आज दुनिया में जिस तरीके से इन चीज़ों को खोल खोल कर दिखाया जा रहा है ना, तो पिछले बारे के साथ इसको जोड़कर देख लीजिए। अल्लाह सुबहान तआला ने ला तफरख कहकर एक पूरे कल्चर को बंद किया। आज भी आपकी बहुत सारी चीजें लिमिटाइज हो जाएंगी जब आपके अंदर से ये दिखावा खत्म हो जाएगा। देखिए आपने वही पहना है ना जो आपको अच्छा लगता है, पुराना कपड़ा बड़ा अच्छा लगता है, नरम होता है, सॉफ्ट होता है, धुला होता है, नया कपड़ा कड़कड़ करता है, दूसरों को अच्छा लग रहा होता है आपको चुभ रहा होता है, नया नया इल्म भी कड़कड़ा होता है बड़ा, आप खूब फंदे खाई कर रहे होते हैं और खूब बड़के मार रहे होते हैं और कड़कड़ करते हैं जी, दीन 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 दीन, और सब गलत, सब गलत, तुम भी नहीं ठीक, क्योंकि नया कपड़ा पहनने वाले को पुराने कपड़े कहाँ अच्छे लगेंगे किसी के। लेकिन जब दीन और इल्म जज्ब होता है ना, तो वो पुराने कपड़े की तरह अपना पूरा असर आपको दे देता है। एक वक्त होता है आप याद कर रहे होते हैं कोई चीज़, याद है, मेमोराइज कर रहे हैं, एक वक्त होता है वो आपको भूलती नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में आपको मुझे ये बता दिया कि अपनी ज़िंदगी को किसी मकसद में लगाओ। आप देखिए कि जो लोग अपने आप को बहुत नुमायाँ करते हैं ना, बहुत ख़तरे में है, और आज के नुमायाँ होने और कल के नुमायाँ होने में बहुत फ़र्क है। हसद पैदा होगा, नज़रें बद हो सकती है, दुश्मन पैदा होंगे, आप उन चीज़ों को देखे चोर चोरी करने का इरादा कर लेंगे कि इनकी औरतों के पास बहुत जेवर है। और आपकी ज़िंदगी का एक फोकल पॉइंट पता क्या होगा, एक खातून खाना फारिग वक्त में जब ज़रा चिल करना चाहती है ना, चले चाय का कप लेके बैठती हो, तो वो फ़ोन पे स्क्रॉल करती है। आज एक अपने लिए तजर्बा कर लीजिए, मेरा डाटा किन चीज़ों में ख़त्म होता है, मेरी हिस्ट्री खोलकर फ़ोन की कोई देखे मैं ज़्यादा किन वेबसाइट्स पे गई। आपको तो क्या आज आपके फ़ोन, आपके लैपटॉप, आपके एक एक चीज़ आपका A to Z डाटा खोल के दिखा सकते हैं। यहाँ नहीं, दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं ना, अगर आपको सिर्फ ये HP एड्रेस पता है ना अपने बच्चे के लैपटॉप का, आप दुनिया में कहीं बैठकर उसका खोल कर देख लें कि वो क्या देख रहा है। आज तो दुनिया में वो क़यामत बरपा है कि अल्लाह छोटी बड़ी चीज़ें खोल कर दिखा देगा। हर वक्त स्क्रॉल करते रहते हैं, इधर क्या है उधर क्या है, नेकियां जमा करें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, यही आपको मुझे बताया जा रहा है। और जितना ज़्यादा ज़िंदगी में आजमाइशों से गुजरेंगे ना, उतना अल्लाह आपको कोयले से हीरा बनाएगा। कोयले पहनना को पसंद करते, हाथ को भी लग जाए तो धोएंगे कि हाथ काले हो गए, लेकिन कोयले और हीरे में फ़र्क किस चीज़ का है, दोनों 100% कार्बन है, लेकिन कोयला हीरे में कब ढलता है, जब बहुत प्रेशराइज किया जाता है। माजी के दौर में जो बड़े बड़े दरख्त अंदर चले गए, वही बाद में कोयला बन गए, और कोयले को कंप्रेस कर करके उसको प्रेशराइज कर दें तो वो डायमंड बन जाता है, उसके अंदर कट्स लगा देते हैं। आप अपने बारे में सोचिए कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, कि आपकी मेरी ज़िंदगी सिर्फ इस दुनिया के इस गमों में कि हाय मियाँ की जॉब ना चली जाए, हाय रिस्क कम है, हाय गुजारा नहीं होता, हाय ये हाय वो, इन सब चीज़ों को साइड पर कर दीजिए। और अगर आप इनसे सवाल करें कि आसमान से पानी उतार कर ज़मीन को इसकी मौत के बाद जिंदा किसने किया, तो यकीनन इनका जवाब यही होगा कि अल्लाह ताला ने। आप कह दीजिए कि हर तारीफ अल्लाह ही के लायक है, बल्कि इनमें से अक्सर बेअक्ल हैं। वमा हाजिहिल हयात दुनिया इल्लाहु वलाइब, ये सब आपका माइंडसेट बन रहा है कि तुम क्यों सोचते हो ये दुनिया, ये छोड़ना वो छोड़ना, और दुनिया की ये जिंदगी तो महज खेल तमाशा है, अलबत्त आखिरत के घर की जिंदगी हकीकी जिंदगी है। काश ये जानते होते, कितने लोग जो थे दुनिया वाले वो आज कब्रों में। कहते ना कि कब्रिस्तान भरे पड़े हैं उन लोगों से जो कहते थे कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चलेगी, आज वो चल रही है। फ़ाइज़ा रकीबु फिल फुल्क, बस ये लोग जब कश्तियों में सवार होते हैं तो अल्लाह ही को पुकारते हैं, इसके लिए इबादत को खालिस करके, फिर जब वो इन्हें खुशकी की तरह बचा लाता है तो इसी वक्त शिर्क करने लगते हैं कि हमारी दी हुई नेमतों से मुकरते रहें और बरतते रहें, अभी अभी पता चल जाएगा। कभी क्रूज के साथ गया आप में से कोई, शायद यहाँ तो नहीं होते होंगे, समंदरों में कई कई दिन के लिए बहरी जहाज़ों में सफ़र करते हैं लोग, बड़े बड़े महल नुमा जहाज़ होते हैं, कई कई स्टोरीज हैं उसकी, 10-10, 20-20 मंजिलें ऊपर है ना, तो पानी के अंदर भी इतनी होती है, हर वो चीज़ उधर जो नहीं होनी चाहिए, उसमें कसिनो भी है, उसमें कैबरे भी है, उसमें नाइट क्लब भी है, फन भी है, खाना पानी हर चीज़ एक्सट्रीम है, और लोग पानियों पे जाके ना अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं। आगे आयत आने वाली है, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि अल्लाह की नाशुक्रिया करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि जिन कश्तियों में हम मस्तियां कर रहे हैं अगर ये डूब जाए तो हमारा क्या अंजाम होगा। अवलम यरौन्ना जअलना हरमन आमिनन, क्या ये नहीं देखते कि हमने हरम को बामन बना दिया, हालांकि इनके इर्द गिर्द से लोग उचक लिए जाते हैं, यानी उस दौर में इतने फितने थे कि लुटेरे होते थे, इधर उधर मारकूट करके चले जाते थे, लेकिन अल्लाह की रहमत से हरम का इलाका सेफ था। अल्लाह ताला इस नेमत का एहसास दिला रहे हैं। क्या ये बातिल पर तो यकीन रखते हैं और अल्लाह ताला की नेमतों पर ना शुक्री करते हैं? और इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे, या जब हक किसके पास आ जाए तो वह इसे झुठलाए? अलैहिस्सा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, कैसे कुफार का ठिकाना जहन्नम ना होगा? अब ये सवाल जवाब, और अब जरा सी आखिरी आयतें देखिए सूरत की। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमाल मोहसिनीन, और जो लोग हमारी राह में मुशक्कतें बर्दाश्त करते हैं हम इन्हें अपनी राहें जरूर दिखाएंगे। यकीनन अल्लाह ताला नेकुकारों का साथी है। बड़ी प्यारी आयत है, जिसको उर्दू में भी कहते हैं ना एक शेर में, कि ढूंढने वालों को नई दुनिया देते हैं। कुछ लोग एक जुमला बोलते हैं, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। जो आपकी तड़प होगी ना, वही आपकी तलब होगी, और जो आपकी तलब होगी वही अल्लाह आपको अता करेगा। अल्लाह से जब भी आप कुछ मांगते हैं वो जरूर देता है आपको। नहीं मिला ना तो भी आपने मांगा ही नहीं, ये अल्लाह ने आखिरत के लिए लपेट के रखा हुआ है आपके लिए। अमल और तदब्बुर के नुक्ते देखते हैं आयत के। अमन और अमान की नेमत पर अल्लाह तआला की हमदो सना बयान करें। कहिए जरा, अल्हम्दुलिल्लाह नेमतिल अमन, ईमान। और वाकई बहुत सुकून है। चोरियां, डाके और इस तरह की अजीबो गरीब चीजें बंदे का सुकून लूट लेती हैं। फिर इसी तरह ऐसा अमल करें जो अल्लाह ताला को पसंद हो, अगरचे इसमें मशक्कत ही क्यों ना हो। जहाँ नेकियों पर अमल करना मुश्किल हो वहां से हिजरत कर लें। कुरान से रहनुमाई, इस बात से डरें कि कहीं अल्लाह की मासीयत की हालत में मौत ना आ जाए, क्योंकि बंदा जो काम करते हुए मरेगा ना, क्यामत के दिन उसी पे उठाया जाएगा। अल्लाह ताला की इबादत और वहदानियत छोड़ने पर कोई भी उजर काबिले कबूल नहीं है। मुशरिकीन और अपने नफ्स से जिहाद करने वाले के लिए अल्लाह की तरफ से राहे हक की खुशखबरी है। गौर व फिक्र की बात है, अगर किसी जगह रब की इबादत करना मुहाल हो जाए तो वहां से हिजरत कर लेना चाहिए। मोमिन की मुसीबतें इसके अजर व सवाब के मुकाबले में बहुत हल्की हैं, जिसका इसे इंतजार होना चाहिए। यानी दुनिया 4 दिन की है, खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी खैर होगी, और कोयले से या कार्बन से डायमंड बनकर आप जन्नत में होंगी। जन्नत की औरत इतनी हसीन होगी कि वो शरबत पिएगी ना तो जहां जहां से गुजरेगा उसका वो रंग दिखेगा, क्रिस्टल डॉल। लेकिन दुनिया में मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया अगरचे आपके लिए बाकी रहे, लेकिन आप इसके लिए बाकी नहीं रहेंगे। या आप दुनिया को छोड़ के चली जाती है, या आप दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना अजीम जिहाद है, और नफ्स से मुजाहदा जिहाद की इब्तदाई फॉर्म है। यानी नफ्स से जो जिहाद है ना, ये वो पहला जिहाद है, जब ये कर लें तो अगला जिहाद फिर खुद ब खुद आसान लगता है। तो क्या पता चला, खुलासा कर लेते हैं अभी तक की बात का, कि जब अल्लाह ताला आपको दुनिया दे तो उसी में अंदर इतना ना खो जाए कि आपकी नमाजें बेकैफ हो जाएं और आपका वक्त लगवियात में गुजरने लगे। आगे सूरत रूम है, पेशन गोई जो सच साबित हुई बाद में, और नबी सल्लम की नबूवत की सच्चाई की भी दलील है। 60 आयात है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुलिबत रूम फी अदनल अर्दी वहुम मिन बादी गलबिहिम सयगलिबून। हरूफ मुकद्दात, रूमी मغلوب हो गए हैं नजदीकी जमीन पर, और वो मغلوب होने के बाद अन करीब गालिब आ जाएंगे। चंद साल ही में इससे पहले और इसके बाद भी इख्तियार अल्लाह ताला ही का है। इस रोज मुसलमान शादमां होंगे, अल्लाह की मदद से वो जिसकी चाहता है मदद करता है। असल गालिब और मेहरबान वही है, अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला अपने वादे का खिलाफ नहीं करता। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। क्या पता चला, जब नबी सल्लम का दौर था तो उस वक्त दो सुपर पावर्स थी, एक रोमन्स थे और एक ईरानीस थे। रोमन कह लीजिए क्रिश्चियन थे, मुसलमानों की हमदर्दियां अहले किताब होने की वजह से इनके साथ थी। इसके बरक्स जो ईरानी थे वो शिर करते थे, तो मक्का वालों को लाइक माइंडेड लगते हुए वो अच्छे लगते थे। अल्लाह ताला ने एक ऐसी खबर दी जो तकरीबन 9 साल के बाद पूरी हुई। उस दिन मुसलमान गजवे बदर की खुशी कामयाबी लेकर वापस आ रहे थे और उधर से रूम फतह हो गया। बहुत बड़ी दलील है कि अल्लाह के नबी अपने पास से बात नहीं करते थे, अल्लाह ताला की तरफ से थी। अब दोबारा देखिए फिर दुनिया, यानी आप कोई सूरत में खास तौर पे पारे का ये थीम क्लैरिटी के साथ देख रहा है कि दुनिया का छिलका छोड़ दो ताकि आखिरत का गुदा ले सको। जो भी दुनिया की आप चीज ले लें, कोई सोचे ना, जिसकी बड़ी तड़प थी, शादी से पहले कपड़ों का शौक होता है बंदे को, माए लेके नहीं देती, महंगा नहीं, और जो नया अच्छा कपड़ा है वो पेटी में डाल दिया कि ये जहेज में जाएगा। कोई एक जोड़ा जो आपको मिल जाता या मिलता है अभी भी, बड़ी क्रेविंग है आपको, हाय ये जोड़ा। और अल्लाह माफ करे, आज देखिए फोहश और बेहयाई, पूरी पूरी औरतें बड़े बड़े मॉडल्स बन के सज संवर के पहन के वो कपड़े दिखाती हैं कि तुम ऐसी लगोगी। इस पे भी बात कर लीजिए, जब तक कपड़े की तस्वीर साथ ना हो कपड़ा नहीं अब बिकता बकौल लोगों के। आज से 5 साल पीछे जाइए, बिकते थे कपड़े बगैर तस्वीरों के मॉडल्स के? आज आपका 5 हजार का जोड़ा 20 से 25 हजार का क्यों बिक रहा है? कॉटन तो वही है जो जमीन से उग रही, वही बीज है जितने का उगता है। ये सिर्फ कपड़े का कीमत नहीं है, ये उस मॉडलिंग की कीमत जो उस औरत ने करवाई बेचारी से, फिर उस मार्केटिंग कंपनी की जिसने उसको किया, फिर उस फोटोग्राफर की जिसने वो तस्वीरें बनाई। ऐसे लगता है कि इससे प्यारा जोड़ा ही कोई नहीं। जब बाद में आते हैं आप कहते हैं ये था, आप पहन ले तो लगता ही नहीं ये वही लग रही हैं आप जो हीरोइन थी। और इससे औरतों में डिप्रेशन कितना आ रहा है आपको पता? वो अपने आप को उस हीरोइन जैसा देख रही होती है, पतली गर्दन, लंबा कद, ये वो फलां फलां, जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट कोई बना ले। आप पहनती हैं, आप पे उतना जचता ही नहीं है, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिंदगी इससे बहुत ऊपर है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कपड़े नहीं पहने, पहन के खुश हो मना नहीं है, लेकिन खुशी इसमें नहीं है। इसी को अल्लाह ताला कह रहे या लमू नज़ाहिर मिन अल हयात दुनिया। वो तो सिर्फ दुनियावी जिंदगी के जाहिर को ही जानते हैं और आखिरत से बिल्कुल ही बेखबर है। क्या इन लोगों ने अपने दिल में ये गौर नहीं किया कि अल्लाह ताला ने आसमानों को और जमीन और इनके दरमियान जो कुछ है सबको बेहतरीन करीने से मुकर्रर वक्त तक के लिए ही पैदा किया है? हाँ, अक्सर लोग यकीनन अपने रब की मुलाकात के मुनकर हैं। देखिए अल्लाह ताला कुरान में ये बार बार क्यों कह रहे हैं अक्सर लोग, अक्सर लोग? आप क्या कहते हैं या आपने क्या सुना है आज तक? मेजोरिटीज अथॉरिटी, अल्लाह करे नो। अक्सरियत गलत काम करती है। जैसे किसी ने कहा कि एक शख्स थे तो वो दुआ किए जा रहे थे बार बार, अल्लाह मुझे थोड़ों में कर दे, अल्लाह मुझे थोड़ों में कर दे। उन्होंने कहा ये क्या दुआ मांग रहे हैं आप? कहा तुमने सुना नहीं, कलीलों में इबादी है शुक्र, मेरे बंदों में बहुत थोड़े ही शुक्र वाले। सूरह सबा की आयत है, और भी जगह हो सकती है कुरान में। तो मैं थोड़ों में इसलिए होता कि अल्लाह मुझे शुक्र गुजार बना दे। हम आमतौर पे क्या पसंद करते हैं? जो ज्यादा हो, मेजोरिटी के पीछे पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस कॉन्सेप्ट को हमारे सामने रख के बदल दिया कि तुम अल्लाह की मुलाकात का इंतजार करो। अवलम यसीरु फिल अर्द, क्या उन्होंने जमीन में चल फिर कर ये नहीं देखा कि इनसे पहले लोगों का अंजाम कैसा बुरा हुआ? वो इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे और उन्होंने भी जमीन बोई जोती थी, यानी जमीन को हार्वेस्ट किया था, और इनसे ज्यादा आबाद की थी, और इनके पास इनके रसूल रोशन दलाइल लेकर आए थे। ये तो नामुमकिन था कि अल्लाह ताला इन पर जुल्म करता, लेकिन दरअसल वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। इससे क्या पता चलता है? आज की तरक्की से आपकी आंखें हीरा ना हो जाए, पहले दौर की तरक्की इससे बहुत ज्यादा थी। और इसी तरह दूसरी बात क्या पता चलती है कि माजी के लोग, आपका मेरा माजी आज से 10 साल पीछे, वो जब थे तो उनका माजी उससे 10 साल पीछे था। हमेशा चीजें पीछे से आगे जब आ रही होती हैं तो बिगाड़ का शिकार हो जाती हैं। आप देखिए कि आपकी दादियां जैसे सोचती थी, जैसे वो तरबियत करती थी, हो सकता है आपकी वालदा ने वैसी ना की हो, थोड़ी रिलैक्सेशन दे दी। फिर जैसे आपकी वालदा ने आपकी तरबियत की, तो क्या आपने अपनी बेटी की तरबियत वैसे ही की है? चलिए आज वो बेटी अपनी बच्ची की तरबियत कैसे कर रही है? वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं। चेंज हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि वो पैमाने बदल जाते हैं। आज के दौर में एक बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, और पिछले दौर में कहते थे कि बच्चे को जरा हाथ लगा के रखो ताकि दबा रहे। हेफ्स तो डंडे के बगैर नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात कह के कि पिछले लोगों को घटिया ना समझो, वो कई लिहाज से बेहतर थे। ठीक है, उनके पास कंप्यूटर्स नहीं थे, आज की लेटेस्ट चीज़ें हैं वो नहीं थी, लेकिन एथिकली और अपने अखलाक के एतबार से और लाइफ स्टाइल के एतबार से वो खुश थे। आज के इंसान को रिलेट करके आप किसी 10 साल पीछे चले जाइए, सिर्फ 10 साल, कोरोना से पीछे के सालों को ले लें, आने वाला दौर बहुत मुख्तलिफ होगा। ये अगले 10 साल अगर अल्लाह मुझे आपको ज़िंदगी देगा ना, तो आप देखकर इस वक्त को जिससे आज गुजरे ना, आप इसको याद करेंगे। जैसे कोरोना के दिनों में लोग पिछले दिनों को याद करते थे, आज जब कोरोना का तस्वीर भी करते हैं तो आपका दम घुटने लगता है, हर तरफ ऐसे लगता था मौत। बिल्कुल इसी तरह से असल चीज़ यह है कि आप अपनी इस किताब के साथ अपने दिल को जोड़ लें, अल्लाह के हुक्मों पे चलें, फिर दुनिया में जो भी हो, जैसे भी हालात हो ना, आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हुआ? सुम्मा कान आकिबत अल्लज़ीना असाउ, फिर आखिर बुरा करने वालों का बहुत ही बुरा अंजाम हुआ, इसलिए कि अल्लाह ताला की आयतों को झुटलाते थे और इनकी हंसी उड़ाते थे। अल्लाह यब्दुल खल्क सुम्मा युईदुहू, अल्लाह ताला ही मखलूक की इब्तिदा करता है, फिर वही इसे दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे, और जिस दिन कयामत कायम होगी तो गुनाहगार हैरत ज़दा रह जाएंगे, और इनके तमाम तर शरीकों में से एक भी इनका सिफारशी ना होगा, और खुद ये भी अपने शरीकों के मुनकिर हो जाएंगे। और जिस दिन कयामत कायम होगी, इस दिन जमातें अलग अलग हो जाएंगी। फमल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान ला कर नेक अमाल करते रहे वो तो जन्नत में खुश व खुर्रम कर दिए जाएंगे, और जिन्होंने कुफर किया था और हमारी आयतों को और आखरत की मुलाकात को झूठा ठहराया था, वो सब अजाब में पकड़ कर हाजिर रखे जाएंगे। कैसा वो वक्त होगा? आप देखिए ना, एक स्टूडेंट है, आज़ाद है, पढ़ ले, सो जाए, फिल्म देखने चला जाए, खेलने कूदने चला जाए, दोस्तों के साथ खुशगपियाँ कर ले, 5 ऑप्शंस मैंने दिए हैं, पूरी आज़ादी है। लेकिन कल जब उसका पेपर होगा और वो फेल होगा, तो क्या रिजल्ट भी उसके इख्तियार में? वहाँ भी चॉइस है। ये आपकी मेरी दुनिया की रियलिटी। आज आप और मैं बिल्कुल आज़ाद है। मैं मिसाल देती हूँ, एक बकरी है, उसके गले में एक पट्टा डालता है मालिक, फिर उस पट्टे के साथ एक रस्सी बांधता है 10 फुट की, और फिर एक खूंटी लगाता है और उसमें उसकी रस्सी का दूसरा सिरा बांधता है, फिर वो 10 फुट के रेडियस के अंदर उस बकरी के लिए कुछ खाने की चीज़ रख देगा, कुछ पीने की दे देगा, दैट्स इट। जो बकरी इस 10 फुट के अंदर उठ के चल ले, फिर ले, स्ट्रेच कर ले, खा लिया, पी लिया, सो गई, वो बहुत खुश है, उसके लिए वो रस्सी क्या है? सिक्योरिटी। क्यों ना, अगर ये ना हो तो पता नहीं कहीं चली जाए और भेड़िया उसको खा ले। अब होगा क्या, जरा इमेजिन कीजिएगा, बकरी की रस्सी थी 10 फुट की, जब बकरी 10 नहीं 10.5 फुट पे आएगी तो वही गले की रस्सी खींचेगी, तो गले का बंदा बनेगा। ये है बात। रिजेंटमेंट छोड़ दीजिए, इस दुनिया में अल्लाह ने आपके लिए जो रखा है ना, वो अपनी लिमिट्स एंड अपने डोमेन में रहते हुए यूज कीजिए। हम जब अल्लाह की दी हुई चीजों को पीछे करते थे ना, तो फिर वही होगा जो कि इन आयात में लिखा हुआ है।